अध्याय चार, सामाजिक विद्रोह का शिखर चरित्र। शिखर, गिरिराज किशोर। शिखर की जीवनी लिखते समय मुझे एक घटना का स्मरण आ रहा है। 1962 में मैं इलाहाबाद में था। उन्हीं दिनों वात्स्यायन जी इलाहाबाद आए थे। उस जमाने में अज्ञेय जैसे लेखक का किसी शहर में आगमन अपने आप में एक घटना होती थी। कई एक गोष्ठियां हुई, उनमें अज्ञेय जी को सुनने का अवसर मिला। मैंने उन्हें अपने घर पर आमंत्रित किया। उन्होंने सहर्ष आना स्वीकार कर लिया। एक नए क्या, नगण्य लेखक के यहाँ अज्ञेय जैसे लेखक का आना भी एक घटना ही थी। उन दिनों मैं शेखर एक जीवनी से बहुत प्रभावित था। उसे पढ़कर मेरे मन में भी उसी तरह का उपन्यास लिखने की इच्छा जागृत हो गई थी। फलतः उसी जमीन पर मैंने एक उपन्यास लिखना आरम्भ कर दिया था। उसके 20-22 पृष्ठ लिखे भी जा चुके थे। मेरी बहुत इच्छा थी कि वत्स्यायन जी को सुनाऊं। मैंने झिझकते हुए अपने मन की बात कही। वे सहर्ष तैयार हो गए। मैंने सुनाना शुरू किया। सुनाते हुए कुछ कुछ मुझे वैसी सी लाज आ रही थी जैसे मैं अपने आप को निर्वस्त्र कर रहा हूँ। कहाँ वो, कहाँ मैं। उन्होंने धैर्य के साथ सुना और चुप रहे। पढ़ने के बाद दूसरी दूसरी बातें होती रहीं। उनकी चुप्पी से मुझे शंका होने लगी कि मैंने सुनाया भी या नहीं। खैर, जब ये जाने लगे तो मैं उन्हें बाहर छोड़ने गया। मैं बॉर्नेट होटल के सामने वाले बंगले के हिस्से में रहता था। सड़क के पास जाकर जब रिक्शा में बैठने लगे तो उन्होंने एक पांव रिक्शे पर रखे रखे कहा, आप मेरी तरह क्यों लिखना चाहते हैं? अपनी तरह क्यों नहीं लिखते? शिखर एक जीवनी तो मैं लिख ही चुका हूँ। एक दो बात और की और रिक्शे में बैठ गए। मैं सन्न रह गया। लेकिन बाद में मुझे लगा, दरअसल उन्होंने मुझे एक तरह की परतंत्रता से मुक्त किया था। शिखर एक जीवनी इस बार पढ़ते से मुझे यह बात गहराई से महसूस हुई कि अज्ञेय का यह उपन्यास परतंत्रता के खिलाफ और आज़ादी के लिए एक खुली जद्दोजहद है। इस बीच में लगातार यह सुनता रहा हूँ कि शिखर एक जीवनी व्यक्तिवादी उपन्यास है, कलावादी और सौंदर्य बोध पर आधारित उपन्यास है। मैं भी शायद कुछ कुछ ऐसा ही मानता था, परंतु इस बार जब गहराई से पढ़ा तो मुझे लगा कि यह कहना और समझना कतई सही नहीं। कुछ वाक्यों के आधार पर इस उपन्यास को नितांत कलावादी उपन्यास करार दे देना रचना और रचनाकार दोनों के साथ अन्याय है। उपन्यास की भूमिका में अज्ञेय ने एक संकेत दिया है। क्रांतिकारी अंतत्वगत्वा एक प्रकार के नियतिवादी होते हैं, लेकिन यह नियतिवाद उन्हें अक्षम और निकम्बा बनाने वाला कूरा भाग्यवाद नहीं होता। वह उन्हें अधिक निर्भय होकर कार्य करने की प्रेरणा देता है। वह गीता के कर्मयोग से एक सीढ़ी आगे होता है। यदि यूँ कहा जाए कि क्रांतिकारी का नियतिवाद अटल नियति की स्वीकृति न होकर जीवन की विज्ञान संगत कार्य कारण परंपरा का पर गहरा यदि भी अस्पष्ट विश्वास होता है तो शायद सच्चाई के निकट होगा। कामाबंद, शिखर एक जीवनी पृष्ठ संख्या 8, प्रथम भाग। एक और उदाहरण भूमिका से ही दे रहा हूँ। कामा, शिखर निसंदेह व्यक्ति का अभिन्नतम निजी दस्तावेज, रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल सफरिंग है। यद्यपि वह साथ ही उस युग व्यक्ति के युग संघर्ष का प्रतिबिंब भी है। मेरा आग्रह है कि जैसे मेरा समाज और युग बोलता है वह मेरे और शिखर के युग का प्रतीक है। कई रचनाएं ऐसी होती हैं जो अपने यानी लेखक के व्यक्ति के माध्यम से यात्रा आरंभ करती हैं और समाज के भीतर तक चली जाती हैं। समाज वह ही नहीं होता जिसे हम भोग रहे हैं या जिसके हम उपयंत्र हैं। समाज वह भी था जो हमने पहले था और जिसे हमने नहीं और किसी ने भोगा, परंतु उसी की एक कड़ी हम तक पहुंची है। हम उसके साथ बंधे हैं, पर वह समाज उसी कड़ी के माध्यम से हम तक पहुंची है। हम उसके साथ बंधे हैं पर वह समाज उसी कड़ी के माध्यम से हम तक पहुंच रहा है। हम उसे भी भोग रहे हैं। वह समाज जिसे हम न देखते हैं और न भोगते हैं वह भी कहीं हम तक निरंतर पहुंचता है परंपराओं के सहारे, सबसे अधिक साहित्य के सहारे। हम टॉल्स्टॉय के समाज को नहीं जानते, न हम तब थे, पर वह समाज वार एंड पीस के माध्यम से हम तक पहुंच रहा है। हमारी संवेदना का हिस्सा है। हम उसमें जीते हैं, वह हम में जीता है। साहित्य का यही बहुआयामीपन उसकी जीवंतता का आधार है। शिखर एक जीवनी का लेखक जब कहता है उसमें मेरा समाज है, तो स्वाभाविक है वह उस समाज का उपन्यास है जिसकी कड़ी हम तक पहुंच रही है। व्यक्तिगत संबंधों के संदर्भ में भी और सामाजिकता के संदर्भ में भी साहित्य अकेला ऐसा रचनात्मक माध्यम है जो समाज की इकाई मनुष्य के माध्यम से ही अपने सारे आकलन करता है, चाहे वह दर्द हो या दुख या वेदना या भूख या अपमान या दासता या स्वतंत्रता। राजनीति विज्ञान दर्शन की तरह वह समूह में नहीं जीता, समूह भी उस तक जाता है तो पात्रों के माध्यम से। जब मैं गोदान पढ़ता हूँ तो वह पूरा समाज मेरे पास व्यक्ति चरित्रों के माध्यम से आता है, चाहे होरी हो या धनिया या कोई और। वह पूरा समाज मेरे ऊपर ज्वार की तरह नहीं चढ़ा चला आता, उसका एक एक चरित्र समाज है। चरित्र ही वह चावल होता है जो पूरी हांडी की पहचान कराता है। हम समाज किसे कहते हैं? एक तरह के लोगों के उस समूह को जो मानसिक और शारीरिक भिन्नताओं के बावजूद एक समान परंपराओं, स्वभावों, व्यवहारों और रहन सहन की परिपाटी में बंधा होता है। जब खुलता है तो एक साथ खुलता है, भले ही धीमे धीमे खुले। उसके खुलने का एहसास उन व्यक्तियों से होता है जो बदले या बदलते रूप गुण में दिखाई देते हैं, या जो बदलाव को अस्वीकार करके यथास्थिति बनाए रखने के लिए कटिबद्ध होते हैं। समाज की पहचान व्यक्ति उसके व्यवहार और सोच से होती है। हम व्यक्ति को काट कर समाज की पहचान नहीं कर सकते। इस बात को एक उपन्यासकार या लेखक शायद ज्यादा अच्छी तरह समझता है। जो व्यक्ति को नहीं पहचानते समाज को भी नहीं जानते, अतः उसे बात कर भी नहीं रखा जा सकता, उसका बिखरना अवश्यंभावी हो जाता है। पता नहीं कैसे हो कब क्या किसने शिखर युनि को नितांत व्यक्तिवादी उपन्यास मानकर उसे सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया से अलग कर दिया। मुझे तो लगता है शिखर गोदान की ही परंपरा में सबसे आगे ही कड़ी है। मैं श्रेष्ठता अश्रेष्ठता की बात न करके उस श्रृंखला की कड़ी में जुड़ने वाली अगली कड़ी की बात करना चाहता हूँ। जो शिखर है, सामंतवाद का यथारूप स्वीकार कर लेने वाला होरी, अपने समय के साथ एक खामोश संघर्ष करने की प्रक्रिया से गुजरता हुआ अपने प्राण त्याग देता है और संघर्ष को थोपा हुआ नहीं मानता, अपने जीवन का नैसर्गिक हिस्सा समझता है। इसका समाज उन व्यक्ति चरित्रों से बना है जो गोदान के हीरो होरी से निरंतर सहयोगी या विरोधी के रूप में टकराते हैं। सहयोग और विरोध टकराहट की यह प्रक्रिया ही समाज होने का पता देती है। शेखर भी होरी का ही नगरीय रूप है तो शिक्षा और सामाजिक बदलाव के फलस्वरूप शेखर बना है। जब मैं यह कहता हूँ तो पूरी जिम्मेदारी के साथ उस खतरे को समझते हुए कहता हूँ जो इस तरह के निष्कर्षों के साथ एक लेखक पर मंडराना आरंभ कर देते हैं। होरी अपने चारों तरफ के कसे बंधनों का एहसास कराता है, परंतु वह उनके प्रति जागृत नहीं, न उन्हें तोड़ने के लिए प्रयत्नशील है। अपने बंधे होने के एहसास को आस्था का अंग बनाने वाला व्यक्ति स्वतंत्रता के महत्व का जितना एहसास कराता है, उतना ही एहसास वह पात्र भी कराता है जो परतंत्रता को जानता है और अपने बंधन को तोड़ने के लिए नियोजित ढंग से अपना विद्रोह समझौता है, चाहे वह व्यक्तिगत हो चाहे पारिवारिक, चाहे सामाजिक हो चाहे शैक्षिक, यानी जिसका तकाजा हर उस स्थिति से है जो उसकी स्वतंत्रता में बाधक होती है और रूढ़ी बनकर उसके विरोध में खड़ी हो जाती है। ऐसे पात्र का संतरास भी किसी से कम नहीं। सामाजिक कारणों से परंपराओं के दबाव में जो व्यक्ति या पात्र उनके खिलाफ संघर्ष करता है, वह व्यक्तिगत संघर्ष न होकर एक सामाजिक संघर्ष ही है। शिखर के बचपन का एक दृश्य है। श्रीनगर में वायसराय का दौरा था। काश्मीरियों की भीड़ वायसराय के स्वागत के लिए पैरहन और कुल्ला पहने जमा थी। एकाएक नदी के दोनों ओर मानो बादल गरज उठे और गर्जन ताल पर चलने लगा। पुरुष और स्त्री सिवा उन सफेद पगड़ी वाले पंडितों के ताल से छाती पीटने लगे, भक्त खुदाया भक्त खुदाया। पिता ने बताया कि युद्ध के कारण महंगी बहुत हो गई है और ये लोग भूखे मर रहे हैं। वायसराय सम्राट का प्रतिनिधि है, सब कुछ कर सकता है, इसलिए वे लोग उसी की फरियाद करने आए थे भात के लिए। सिवा उन पगड़ी वाले पंडितों के लिखकर लेखक ने हैव्स और हैव नॉट्स का स्पष्ट विभाजन कर दिया है, ये बताने के लिए कि जरूरतमंद आदमी आवाज उठाता है और समृद्ध व्यक्ति खामोश रहकर हैव नॉट्स के साथ असहयोग करता है। फकीरों की परंपरा से अलग करके देखना उन दो कणियों को अलग करना है जो अपने अपने समाज को पहचानते हैं और अपने उपकरणों के माध्यम से व्याख्यायित करते हैं। शेखर ईश्वर की मान्यता या सत्ता के खिलाफ विद्रोह करने वाला हिंदी साहित्य का पहला पढ़ा लिखा पात्र है। पढ़े लिखे लोग ज़्यादातर बुजदिल होते हैं। बालक होते हुए भी ईश्वर को लेकर उसके मन में उठने वाले प्रश्न स्वाभाविक हैं। वह अंत में इस नतीजे पर पहुंचता है, इंटर का मां, मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं प्रार्थना भी नहीं मानता, भवानी झूठी है, ईश्वर झूठा है, ईश्वर नहीं है। इंटर का मां, यह अवज्ञा ईश्वर की ही, ऐसा नहीं। पिता की सत्ता की अवहेलना करके शेखर इस नतीजे पर पहुंचता है कि उसके लिए ईश्वर नहीं, जबकि ईश्वर उसके पिता, उसकी माता और भाइयों बहनों के लिए है। भेद से पिटने पर वह विश्वास के लिए पिटने का प्रज्वलित आनंद, अपूर्व विजय, आत्मसम्मान की लहर अनुभव करता है। उसी का नाम विद्रोह है, जो मनुष्य यथावत्ता से बाहर निकलने के लिए करता है। यह पूरी प्रक्रिया समाज के प्रति समर्पित एक क्रांतिकारी के बनने की प्रक्रिया है। जो शेखर है, होरी नहीं है। फिर भी होरी व्यवस्था के विरुद्ध पाठक के मन में विद्रोह और विकर्षण उत्पन्न करने वाला सशक्त पात्र है। जब उसकी बहन कमला का जन्म होता है तो भी उसे समझ में यही आता है कि सब झूठ है, ईश्वर नहीं है। वह पक्षी नहीं, पक्षी झूठ नहीं बोलते, उनका तो ईश्वर नहीं है, नहीं है ईश्वर नहीं है। कई बार विश्वास का उठ जाना विचार की स्थितियां उत्पन्न कर देता है। शेखर जहां ईश्वर के अस्तित्व या कहिए होने को नकारता है, वहीं वह मनुष्य के प्रति अपने विश्वास को भी टटोलता है। अब वह बालक शेखर इस नतीजे पर पहुंचता है, कोई किसी का नहीं है। यदि किसी का कोई है तो उसकी अपनी बुद्धि, मनुष्य को उसी के सहारे चलना है, उसी के सहारे जीना है। बालपन में हुआ यह एहसास ही उसे जीवन भर के लिए विद्रोही बना देता है। वह मन चला उद्धत, सबसे अलग रहने वाला अड़ियल टट्टू हो गया और उसे सीधा करने के जो उपचार किए उनका ही उल्टा असर हुआ। शेखर का जिस प्रकार विद्रोही व्यक्तित्व उपन्यास में विकसित हुआ है, वह आद्योपांत वैसा ही बना रहता है। और किसी भी तरह का व्यवहार जिसे वह अमान्य समझता है, गले से नीचे नहीं उतर पाता। स्कूल में भी मॉनिटर होने के बावजूद वह मास्टर जी के विलंब से आने के प्रति एक बाजारू कश्मीरी गीत गवाकर अपना विरोध प्रकट करता है। मास्टर को मुर्गा बना देने पर वह जब उठता है तो इस तरह उठता है कि जानबूझकर उलट जाता है और उसके फूल फूट जाकर मास्टर के पेट में लगते हैं। तो मास्टर कहता है, देखूंगा तुम्हें। तो शेखर ऐसे स्वर में तू लू कहता है, जैसे किसी कीड़े को कह रहा हो। उसका यह विद्रोह कभी कभी उद्दंडता की सीमा तक पहुंचा हुआ लगता है, जो शायद परंपरागत रूप से मान्य नहीं लगता। उसमें त्रुटियां अनेक रह गई, लेकिन एक शक्ति भी उसने पाई जो स्कूलों में कम मिलती है। उसने अकेले होने की सामर्थ्य पाई। स्कूलों में टाइप बनते हैं और बना व्यक्ति, क्या टाइप बनाना ही सामाजिकता है? व्यक्ति बनाना समाज विरोधी होना होता है। दरअसल क्रांति के लिए मनुष्य का व्यक्ति बनाना जरूरी है। सुभाष, भगत सिंह, गांधी, माओ, लेनिन आदि ये सब व्यक्ति बने, टाइप नहीं। टाइप दृष्टा नहीं हो पाता। अनुगामी भले ही हो जाए, होरी भी व्यक्ति ही है, लेकिन उसके अपने समाज को देखते हुए वह टाइप ही है। सहिष्णुता की दृष्टि में उसमें अदम्य क्षमता है। वह क्षमता उसे टाइप होने के बावजूद व्यक्ति के रूप में स्थापित कर देती है। उसका संघर्ष उस युग के हजारों लाखों किसानों का संघर्ष है, लेकिन जैसे ही लेखक उसे उन हजारों टाइप किसानों में से निकाल कर अलग रख देता है, वैसे ही वह व्यक्ति हो जाता है, हांडी का चावल। सक्षम लेखक का संस्वर टाइप को व्यक्ति में परिणत कर देता है। दरअसल पूरा का पूरा समाज या समूह साहित्य में व्यक्ति चरित्र या चरित्रों के माध्यम से जाना, समझा और अभिव्यक्त किया जाता है। साहित्य में मात्र समूह की कोई पहचान तब तक नहीं बनती जब तक वह व्यक्ति चरित्रों के माध्यम से अभिव्यक्त नहीं होता। होरी और शेखर में यही अंतर है। होरी टाइप में से उत्पन्न व्यक्ति चरित्र है और शेखर मूलभूत व्यक्ति है, जो अकेला रहने की सामर्थ्य अर्जित कर चुका है। वह अकेला इसलिए नहीं रहता कि वह समाज विरोधी है, बल्कि इसलिए अकेला रहता है क्योंकि उसके उद्देश्य बिल्कुल भिन्न है। उसके उद्देश्य का पता दूसरे भाग में ज्यादा स्पष्ट होता है। वह कहता है, एमटेट का मां, मैं मेहनत उद्देश्य से ही कर रहा हूं। एमटेट का मां, मैंने तो साहित्य का क्षेत्र चुना है। एमटेट का मां, साहित्यकार होना ही एक सामाजिक फिनोमेना है, शायद इससे बड़ी सामाजिकता दूसरी नहीं। बिना सामाजिक सरोकार के कोई लेखक हो सकता है? यह राजनीतिक कारणों से तो भले ही सोचा जा सके, परंतु वैसे इस तरह का सोच नकारात्मक सोच ही कहलाएगा। शेखर का हिंदी में लिखने का निर्णय लेना और अभिमान के साथ यह खाना, हिंदी जनभाषा है, करोड़ों व्यक्तियों के प्राण इसमें बोलते हैं। समापन। किसी भी सामाजिक चेतना में कम बड़ी चेतना नहीं है। शिखर का जीवन दर्शन टाइप नहीं, टाइप से एकदम भिन्न है, क्योंकि वह टाइप जीवन को नहीं मानता और सिक्योरिटी का जीवन न जीकर एक संघर्षमय जीवन जीना चाहता है, और शायद उसका यह पक्ष उसे क्रांतिकारी भी बनाता है। वह अपने पिता से कहता है, ठीक है पर मैं सिक्योर होना नहीं चाहता। आप घर गृहस्थ निश्चित आमदनी और सिक्योरिटी की बात कहते हैं, मुझे यह जीवन के रोग लगते हैं, जिनमें से तो मैं बचना चाहता हूँ। यह चैन की जिंदगी, यह आश्वासन का भाव, यह दिनों दिन जोखिम की अनुपस्थिति, यही तो घून है जो जीवन की शक्ति को खा जाता है। मैं इन सबको उलटना चाहता हूँ, चाहता हूँ निरंतर आशंका और जोखिम का वातावरण, ताकि मैं हर समय लड़ने को बाध्य हूँ, अपने हाथ से तोड़कर नष्ट करूँ और अपने ही हाथ से फिर नए सिरे से बनाऊँ। क्रांतिकारी भी यही करता है, और जोखिम का वातावरण पसंद करता है, लड़ने को तैयार रहता है, आशंकाओं से घिरा रहता है, सब कुछ तोड़ डालना चाहता है जिससे एक नया समाज बने। उस तोड़ फोड़ और संहार के पीछे उसका यही सर्वोच्च सामाजिक उद्देश्य होता है। उसकी सोच का एक कारण है सिक्योरिटी, सुख शांति और उन्नति आदि सब बचपन की उम्र को लंबा करने वाले लगते हैं। सभ्यता को वह परावलंबी बनाता है। वह पिता से पूछता है, सभ्यता का क्या यही अर्थ होना चाहिए कि जीवन की ललकार अनसुनी कर दी जाए, बढ़कर उससे टक्कर लेने की शक्ति को कुचल दिया जाए। इस सामाजिक बोध का होना समाज के प्रति शिखर की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। गोदान का होरी भी संघर्ष का अंतिम उदाहरण है, परंतु उसका संघर्ष परिस्थिति जन्य संघर्ष है। तत्कालीन सामाजिक स्थितियां और वर्ग उस संघर्ष को उस वक्त थोपते हैं, और वह अपने युग के अनेक किसानों की तरह उस संघर्ष को स्वीकार करके उसके प्रति नतमस्तक होकर उसे स्वीकार करता है, उसे कर्मों का भोग मानता है। एक अच्छे भविष्य की कामना में अंधकारमय भविष्य की ओर धकेलता चला जाता है। गाय का खरीदा जाना भी सुख की उसी परिकल्पना को पल्लवित करने का प्रयास है, लेकिन उसके भाई की पत्नी उसे भी नहीं रहने देती। होरी उसे भी यथावत स्वीकार करने के लिए बाध्य है। शिखर को दान की प्रतिक्रिया लगता है जो सिक्योरिटी, सुख शांति और उन्नति को अस्वीकार करके हर समय लड़ने को बाध्य होना चाहता है। अपने हाथों ऐसे समाज को तोड़कर एक नया समाज बनाने का स्वप्न देखता है। यह उसके व्यक्तित्व का सबसे पुष्ट पहलू है, जो अपने से पहले के सब औपन्यासिक व्यक्ति चरित्र से भिन्न है। ऐसा नहीं कि उसके मन में दया, माया या ममता नहीं, जेल में रहते हुए भी उसका एक सामाजिक परिवेश बाबा मदन सिंह से उसकी पटरी बैठती है, क्योंकि वे मानते हैं नोटेड कामा दासता एकदम घृणित परवस्था है, और किसे कहते हैं अप्रिय के ज्ञान को नहीं, असत्य में विश्वास को भी नहीं। दासता कहते हैं उस व्यवस्था को जिसमें हम सत्य और असत्य को जानने में असमर्थ हो जाते हैं। दासता व बंधन व मनाही जो हमारा ज्ञान मांगने का अधिकार छीन लेती है। शेखर इस वास्तविकता का साक्षात्कार अपने जीवन में कर चुका है। बाबा के मरने पर पहली बार उसके मन में प्रार्थना का भाव मरता है, तो उनके अंतिम सूत्र को याद कर सकता है। अभिमान से भी बड़ा दर्द होता है, पर दर्द से भी बड़ा एक विश्वास है। यह दर्द और विश्वास उसके व्यक्तिगत दर्द या विश्वास नहीं, बल्कि वे समाज से जुड़े हुए हैं। चटगांव की जीविका के माध्यम से बाबा स्वयं भी उस सामाजिक त्रासदी का साक्षात्कार करते हैं और शेखर को भी कराते हैं। समाज का ही दूसरा प्रतिनिधि मोहम्मद मोहसिन है, जो जेल के किसी भी नियम को नहीं मानता। उसमें सहनशीलता और विद्रोह का विचित्र समन्वय है। वो सजा के तहत दिए जाने वाले टाट के कपड़े नहीं पहनता। कूड़े खाने और खाल उधर जाने के बावजूद वह निर्वस्त्र रहता है। उसे छूत की बीमारी वाली काल कोठरी में डाल दिया जाता है। उससे भी उसे भय नहीं लगता। वह हर हाल में हंसता और गाता रहता है। उसकी हर बात पर सजा बढ़ती जाती है, पर वह निर्द्वंद है। यह उसका सोचा समझा विद्रोह शिखर की तरह। अंततः उसे टीबी हो जाती है और वह और घर के जिले की जेल में स्थानांतरित कर दिया जाता है। वह अपराजित बना रहता है। उसी प्रकार रामजी नाम का जाट जेल में आता है। वह अपनी भाभी और उसके प्रेमी के विरुद्ध स्वयं न्याय करता है और उन्हें गणाशे से काट कर कचहरी में हाजिर हो जाता है, और वह कृत्य के लिए तनिक भी शर्मिंदा नहीं। वह अपने तई पूरी तरह ईमानदार है, पर उस पर उसे गर्व है। जब तक वह उसका भोक्ता नहीं बनता, तब तक उसकी बारीकियों से भी परिचित नहीं होता। शेखर उस समाज का अविभाज्य अंग है। आत्म बलिदान को लेकर अपना रास्ता खुद खोजने वाली बात को वह दोनों तरह से तोलने की कोशिश करता है, यह व्यक्तिगत प्रश्न है या सामाजिक उत्तरदायित्व। यह प्रश्न उठना ही है, चरित्र की सामाजिक संलग्नता को रेखांकित करता है। शिखर के व्यक्तिगत पक्ष भी हैं। शारदा शशि से उसका नाता व्यक्तिगत है, वह नाता उसे सामाजिक संघर्ष के लिए प्रेरित करता है। माँ बाप भाइयों से उसका रिश्ता उसे इसलिए प्रभावित नहीं करता क्योंकि वह उसे सामाजिकता से काटता है। सामाजिक दायित्व के निर्वाह के प्रति या तो विरत करता है या फिर उदासीनता अख्तियार कर लेता है, जबकि बाबा मोहसिन और राम जी उसका अंतर्दृष्टि देते हैं और उसकी सोच को स्पष्ट करने में मदद करते हैं। होरी की दृष्टि सामाजिक दायित्वों के प्रति स्पष्ट नहीं है, अगर है तो उसकी पत्नी झुनिया की। मैं शेखर और होरी का इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि ये स्वतंत्रता पूर्व के या उसके आसपास के निर्मित दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरित्र हैं। इतने अंतर्विरोधों और घात प्रतिघातों को सहन करने वाले दूसरे चरित्र शायद हिंदी में कम ही है। इन दोनों चरित्रों का अपना अपना सामाजिक महत्व है। और इस सामाजिक दायित्वों के प्रति अनभिज्ञ होते हुए भी एक संपूर्ण समाज की तस्वीर प्रस्तुत करता है। और शिखर अपने सामाजिक दायित्वों के साथ साथ दो चार होता हुआ अपने व्यक्ति को व्यक्तिगत स्तर पर भी और सामाजिक अंतर्विरोधों के स्तर पर हार जीत की कसौटी पर कसता है। शिखर यद्यपि व्यक्ति चरित्र है परंतु उसका सामाजिक सरोकार सोचा समझा है, शायद राजनीति। सामाजिक और व्यक्तिगत समस्याओं से जूझते हुए एक शिक्षित और विद्रोही युवा का चित्रण हिंदी साहित्य में पहली बार हुआ है। बावजूद सारी प्रचलित मान्यताओं आरोपों और व्यक्तिगतताओं के, शेखर हिंदी साहित्य का एक ऐसा चरित्र है जिसके स्पष्ट सामाजिक सरोकार हैं और उनके प्रति वह पूरी तरह समर्पित है।